मध्यपुरा पाषाण काल। आजकल भारत में मध्यपुरा पाषाण काल को फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है, लेकिन सन 1954 के पूर्व इस प्रकार के उपकरणों के भूतात्विक स्तर क्रम तथा अन्य प्रमुख विशेषताओं आदि के विषय में कोई सुनिश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नामक सरिता के बाएं तट पर स्थित निवासा नामक पुरास्थल की सन 1954 में दक्कन पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के पुराविदों द्वारा खोज से इस प्रकार के पुरापाषाणिक उपकरणों के अध्ययन एवं अनुसंधान की नवीन संभावनाओं का द्वार खुला। निवासा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इसके पूर्व भी फलकों पर निर्मित पाषाण उपकरण समय समय पर प्रतिवेदित हुए थे। एमसी बर्किट एवं एले कमियाडे ने पृष्ठ संख्या 256 1930 में कर्नूल से दतेरा तथा टीटी पीटरसन से ने सन 1936 में पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित सुहन घाटी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के काली मिट्टी के जमावों से और के आर यू टॉड ने महाराष्ट्र में मुंबई के खांडीवली नामक स्थल से फलक उपकरणों की खोज की थी। भारत में पुरापाषाणिक संस्कृतियों के अनुसंधान का यह शैशव काल था, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इन फलक उपकरणों का पृथक पृथक नामकरण किया। बर्किट एवं कमियाडे ने द्वितीय सीरीज द तेरा तथा पीटरसन ने सोहन घाटी के फलक प्रधान उपकरणों को उत्तर सोहन या अंत सोहन लेट सोहन और नर्मदा घाटी से प्राप्त उपकरणों को आद्य नवपाषाणिक प्रोटो नियोलिथिक कहा था। एस डी सांकलिया ने प्रारंभ में निवासा से प्राप्त फलक उपकरणों को द्वितीय सीरीज के नाम से अभिहित किया था। के डी बनर्जी ने इनको निवासियन की संख्या प्रदान की थी। अब अधिकांश पुराविद फलक प्रधान पुरापाषाणिक उपकरणों को मध्य पुरापाषाणिक कहते हैं। यह नाम सार्थक एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रसार मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित पुरास्थल अभी तक केरल गांगेय क्षेत्र सिक्किम असम आदि को छोड़कर भारत के प्रायः अधिकांश प्रदेशों से प्रतिवेदित हुए हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात आदि से समय समय पर विभिन्न पुराविदों द्वारा मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज की गई है। महाराष्ट्र के उल्लेखनीय पुरास्थलों में खांडीवली निवासा बेल पांधरी सूर्यगांव कालेगांव तथा नंदूर माधमेश्वर आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कर्नाटक के बेलगांव बीजापुर गुलबर्गा तथा धारवाड़ जिलों में मध्य पुरापाषाणिक अनेक पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। ये पुरास्थल शोरापुर दुआब भीमा नदी तथा हुड़सगी नाले के क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल नागार्जुन कोंडा नलगोंडा चित्तूर कडप्पा नेल्लौर तथा प्रकाशम आदि जिलों के अनेक पुरास्थलों से मध्य पुरापाषाणिक उपकरण प्रतिवेदित है। बिहार के सिंहभूम तथा पलामू जिले मध्य पुरापाषाणिक पुरावशेषों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पठारी भाग प्रागैतिहासिक अध्येताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। वाराणसी जिले की चकिया तहसील सोनभद्र मिर्जापुर इलाहाबाद जिले की मेजा करछना तथा 12 तहसीलें चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर झांसी तथा ललितपुर नामक जिलों में मध्यपुरा पाषाणिक अनेक पुरास्थल विद्यमान हैं। मिर्जापुर का सिंगरौली वेसिन तथा सोन का चौपन क्षेत्र इलाहाबाद में बेलन घाटी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन सीहोर जबलपुर सीधी शहडोल दमोह पन्ना टीकमगढ़ दतिया आदि जिले मध्य पुरापाषाणिक पुरावशेषों के लिए सुविख्यात हैं। रायसेन जिले में स्थित भीम बैठका की गुफाएं पन्ना जिले में केन के किनारे स्थित पांडव प्रताप तथा सीधी जिले में मध्य सोन नदी की घाटी में विद्यमान सिंघावल पृष्ठ संख्या 257 नकझर खुर्द पटपरा आदि के पुरास्थल इस संदर्भ में विशेष महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। नकझर खुर्द तथा पटपरा के उत्खनन से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लूनी जोजरी रेरिया बांदी सुकरी तथा लीलरी की घाटियों में मध्य पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित जायल, मंगलपुरा तथा जनाना आदि पुरास्थलों से मध्य पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं। दक्षिणी राजस्थान में बागन, बेरास तथा कादमली की घाटियों में भी मध्य पुरापाषाणिक पुरास्थलों की खोज की गई। गुजरात प्रांत के गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ, इन तीनों क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाणिक औजार प्रतिवेदित हो चुके हैं। पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में सोहन घाटी, सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में स्थित रोडी तथा हिमाचल प्रदेश में ब्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों से प्राप्त अंत सोहन उपकरणों को प्रायः मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के कश्मीर क्षेत्र में लिद्दर नदी के दाहिने तट पर स्थित पहलगाम नामक पुरास्थल एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र से सांकलिया एवं उनके सहयोगियों ने कतिपय पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए थे, जिनमें से दो छिद्रक बोरर उपकरण थे। इन उपकरणों को प्ररूप तथा स्तरीकरण के आधार पर मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है। उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड, फ्लैग ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरीन तथा वेधक पॉइंट्स अन्य प्रमुख उपकरण प्रकार हैं। यदाकदा छोटे छोटे किंतु अत्यंत सुंदर हैंडएक्स तथा क्लीवर भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से फलक ब्लेड तथा चक्राव क्रोट भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इस काल के फलक तथा फलक ब्लेड प्राय साधारण क्रोट से निकाले हुए मिलते हैं। कच्छप क्रोट तथा यदाकदा चक्राव क्रोट भी भारत के मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ मिलते हैं। उपकरणों के पुनर्गणन में निपीट प्रविधि, प्रेशर टेक्निक का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में उपकरणों के निर्माण के लिए अभिष्ट एवं उपयुक्त पत्थरों का चयन बहुत समझबूझकर किया जाता था। क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग इस काल में प्रचलित था, लेकिन अत्यंत अच्छे प्रकार के महीन कड़ों वाले क्वार्टजाइट शिला शकल इसके लिए चुने जाते थे। चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग बहुतायत के साथ होने लगा था। पत्थरों का चयन उनकी सुलभता पर प्रधान रूपेण आधारित था। जिन पुरास्थलों पर उत्तम प्रकार के पत्थर उपलब्ध नहीं थे, वहां पर सामान्य प्रकार के ही पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पृष्ठ संख्या 258, चित्र 18, बेलन नदी, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण। यहाँ पर यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों का परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ। यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बदलती हुई जलवायु तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन मानव की अपने उपकरणों में परिवर्तन करने पड़े। परिवर्तन में बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान का भी प्रमुख हाथ माना जा सकता है। उपकरणों के लघु आकार प्रकार से यही इंगित होता है कि तत्कालीन मानव ने अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का भरसक प्रयास किया। मध्य प्रदेश में नर्मदा तथा सोन घाटी, महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी और राजस्थान में बेराज बेसिन आदि से प्राप्त साक्ष्य इस बात का संकेत करते हैं कि मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों का विकास पूर्ववर्ती निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों से हुआ। भीमबेटका तथा बेलन घाटी से प्राप्त प्रमाण भी इसी संभावना की पुष्टि करते हैं। दोनों में फलकीकरण के लिए एक जैसी प्रविधि का उपयोग तथा उपकरणों के निर्माणार्थ क्वार्टजाइट का प्रयोग, ये तथ्य इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय है। पृष्ठ संख्या 259, कालानुक्रम। भारत में मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृतियों के कालानुक्रम की समस्या अत्यंत जटिल है। साधारणतः इस काल का तिथि निर्धारण दो आधारों पर किया जाता है, एक पशु जीवाश्म संबंधी साक्ष्य, दो निरपेक्ष तिथियों से संबंधित साक्ष्य। पशु जीवाश्म संबंधी साक्ष्य भारत में जहां कहीं पर भी मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण नदी वेदिकाओं तथा सोपानों के स्तरित जमाओं से प्राप्त हुए हैं, उन्हें नदियों के द्वितीय उच्चयन काल से संबंधित किया जा सकता है। प्रवरा के बाएं तट पर स्थित निवासा नामक पुरास्थल पर द्वितीय ग्रेवाल जमाव से प्राप्त ब्लेड फलक एवं स्क्रेपर उपकरणों को प्रवरा के द्वितीय उच्चयन काल से संबंधित किया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र में गोदावरी तथा उसकी सहायक सरिताओं, मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन तथा उत्तर प्रदेश में बेलन आदि नदियों में एक से अधिक ग्रेवल जमाव मिलते हैं। इन नदियों के प्रथम ग्रेवल से प्रायः निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं तथा द्वितीय ग्रेवल से मध्य पुरापाषाणिक उपकरण उपलब्ध होते हैं। प्रथम तथा द्वितीय ग्रेवल की संरचना में बहुत अधिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। प्रथम ग्रेवल प्रायः अपेक्षाकृत विशाल प्रस्तर खंडों से निर्मित है तथा यह अधिक संयोजित है। द्वितीय ग्रेवल का निर्माण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से हुआ है। अनुमानतः जिस समय इस द्वितीय ग्रेवल का निक्षेपण हो रहा था उस समय नदियों में जलराशि की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि वे विशालतर प्रस्तर खंडों को ऊपर तक ले जाकर जमा कर सकती। नदी की गति एवं वेग में अपेक्षाकृत कमी की स्थिति में द्वितीय ग्रेवल का जमा हुआ। तथापि इस बात की प्रबल संभावना है कि इस समय भी जलवायु अत्यंत आर्द्र थी, क्योंकि प्रायः सभी पुरास्थलों पर द्वितीय ग्रेवल का अपेक्षाकृत मोटा निक्षेप मिलता है। गोदावरी, नर्मदा, सोन तथा बेलन आदि नदियों और उनकी सहायक सरिताओं के द्वितीय उच्चयन काल के स्तरित जमावों से पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म हाथी, मवेशी, गौर या बाश, बुबेलस, घोड़ा या इक्वस, दरियाई घोड़ा, नील गाय अथवा गवियालिस तथा कछुआ आदि के हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों के साथ एचडी सांकलिया को गोदावरी तट पर स्थित कालेगांव नामक पुरास्थल से बास नमदीकस, फाकनर या सिंगो से युक्त एक सिर लगभग 2.50 से 3 मीटर की गहराई पर द्वितीय ग्रेवल निक्षेप से प्राप्त हुआ था। एपी खत्री को नर्मदा घाटी के देवा कछार तथा बर्नर घाट नामक पुरास्थलों से जैस्पर एवं चालसेडनी पर निर्मित उपकरणों के साथ पशुओं के अनेक जीवाश्म प्राप्त हुए थे। बेलन घाटी में देवघाट तथा दया के बीच में और सोन में सीधी तथा सोनभद्र जिलों के अनेक स्थलों पर पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म 20वीं शताब्दी के 70 तथा 80 के दशक में खोज निकाले गए हैं। इन जीवाश्मों को सामान्यतः उच्च प्रातिनूतन काल से संबंधित माना जाता है। पृष्ठ संख्या 260। यद्यपि इनमें से अनेक पशुओं का अस्तित्व प्रातिनूतन काल के पश्चात भी बना रहा, द्वितीय ग्रेवल के निक्षेपों से प्राप्त जीवाश्मों में भी विकासात्मक क्रम सुस्पष्ट नहीं है। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल के कालानुक्रम में इनका महत्व बहुत कुछ सीमित एवं सापेक्ष हो जाता है। आशा है कि भविष्य में इस दिशा में अनुसंधान एवं अन्वेषण से इस संदर्भ में प्रगति होने पर इनकी सार्थकता का उचित आकलन किया जा सकेगा। निरपेक्ष तिथियां, जीवाश्मों की अपेक्षा रेडियो कार्बन उष्मादीप्ति तिथियां मध्य पुरापाषाण काल के कालानुक्रम के लिए विशेष उपयोगी हैं। महाराष्ट्र में स्थित मूला बांध, मूला डैम एवं मध्य प्रदेश के रतिकरार नामक इन दो पुरास्थलों के मध्य पुरापाषाणिक स्तरों से रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। एक मूला बांध TF 3,45,30,030 प्लस माइनस 5,717 ईसा पूर्व इक्वल टू 3,340 ईसा पूर्व। दो रतिकरार TF 9,67,31,750 प्लस माइनस 1,720 ईसा पूर्व 1,625 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन तिथियों के ये दो नमूने नदी के अनुभागों से एकत्र किए गए थे। किसी आवास स्थल लिविंग साइट से संबंधित न होने के कारण इन नमूनों से ज्ञात तिथियां मध्य पुरापाषाण काल के कालानुक्रम की ऊपरी सीमा इंगित करती हैं। भारत में मध्य पुरापाषाण काल के आरंभ एवं विकास के लिए 15,000 से 20,000 वर्षों का समय रख ले तो यह कहा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल की कालावधि 50,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की जा सकती है। यह कालानुक्रम भी अनुमान परक है, इसके और अधिक होने की संभावना हो सकती है। उत्पत्ति, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। सामान्यतः उपकरणों के आकार, प्रकार एवं निर्माण संबंधी तकनीक में परिवर्तन असाधारण परिस्थितियों में ही होते हैं। विशेष उपयोगिता को ध्यान में रखकर भी नए उपकरणों का निर्माण होता है। मध्य पुरापाषाणिक उपकरण परंपरा के संदर्भ में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। एक, क्या इस परिवर्तन का कारण नवीन मानव प्रजातियों का आगमन था? दो, क्या इसके लिए बदली हुई जलवायु उत्तरदायी रही होगी? प्रथम प्रश्न के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहना कठिन है, क्योंकि भारत में अभी तक मध्य पुरापाषाण काल के किसी पुरास्थल से मानव जीवाश्म नहीं उपलब्ध हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि यह परिवर्तन नवीन प्रकार के लोगों के आगमन के कारण हुआ था अथवा निम्न पुरापाषाण काल के लोगों ने ही नवीन प्रकार के उपकरणों का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। यह कहा जा सकता है कि उपकरणों का यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था और इसके लिए विविध प्रवृत्तियां उत्तरदायी रही होंगी। उदाहरणार्थ, मानव का पृष्ठ संख्या 261, विकसित तकनीकी ज्ञान, बदली हुई जलवायु संबंधी परिस्थितियां आदि। आंध्र प्रदेश के कर्नूल, चित्तूर जिलों और मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं सोन की घाटियों में स्थित पुरास्थलों पर मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ छोटे आकार एवं सुंदर बनावट के हैंडएक्स और क्लीवर उपकरण भी अत्यल्प संख्या में मिलते हैं। ये उपकरण निम्न पुरापाषाण काल एवं मध्य पुरापाषाण काल के बीच एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह संभावना प्रकट की जा सकती है कि मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों का विकास पूर्ववर्ती निम्न पुरापाषाणिक उपकरण परंपरा से हुआ हो। बदली हुई जलवायु तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन मानव को अपने उपकरणों में संभवतः परिवर्तन करना पड़ा होगा। इस परिवर्तन में मानव के बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान ने भी यथेष्ट सहयोग दिया होगा। उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल मुस्तीरियन संस्कृति के पश्चात आरंभ होने वाली पाषाण परंपराएं यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के अनेक क्षेत्रों में उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। उच्च पुरापाषाण काल के लिए यूरोप, विशेषकर पश्चिमी यूरोप का अपना एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह काल सांस्कृतिक एवं प्रजातीय दोनों ही दृष्टियों में उल्लेखनीय परिवर्तनों के लिए सुप्रसिद्ध रहा है। इस काल के पाषाण उपकरणों में ब्लेड तत्व की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। ब्लेड सामान्यतः पतले एवं सक्रिय आकार के लगभग समानांतर पार्श्व वाले उन पाषाण फलकों को कहा जाता है जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की कम से कम दोगुनी होती है। इस प्रकार के ब्लेडों के निर्माण के लिए स्पष्टतः विशिष्ट प्रकार के क्रोडों का उपयोग किया जाता था। क्रोड से ब्लेड निकालने के लिए अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि, इनडायरेक्ट प्रेशर टेक्निक अथवा निपट प्रविधि का प्रयोग किया जाता था। इसके पूर्ववर्ती पाषाण कालों के उपकरण प्रायः बहुप्रयोजनीय होते थे। एक ही उपकरण से काटने, चीरने तथा खोदने का कार्य लिया जाता था। उच्च पुरापाषाण काल में प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे। इन विशिष्ट उपकरणों में तक्षणी अथवा गिरमिट सबसे उल्लेखनीय है। ब्यूरिन का उपयोग हड्डी, हाथी दांत, सिंग और यदाकदा मुलायम पत्थर एवं निस्संदेह लकड़ी को तराशने, नक्काशी तथा छेद करने के लिए किया जाता था। उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तम कोटि के प्रस्तर खंडों के अतिरिक्त हड्डी, हाथी दांत तथा श्रृंगों आदि का इस काल में अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। यूरोप के उच्च पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि संभवतः कला के क्षेत्र में मानी जा सकती है। इस काल की संपूर्ण कला राशि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1, गुफा कला अथवा भित्ति कला। 2, गृह कला अथवा सचल कला। 3, लघु मूर्तियां। पृष्ठ संख्या 162। मानव के शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी यह काल बहुत महत्वपूर्ण था। विश्व के रंगमंच पर पूर्ण विकसित मानव, जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में होमो सेपियन अथवा प्रज्ञ मानव कहा जाता है का सर्वप्रथम पदार्पण इसी काल में हुआ। पुरापाषाणिक शब्दावली का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों विशेषकर फ्रांस में हुआ। यूरोप में उच्च पुरापाषाण काल अथवा श्रेष्ठ पाषाण काल का नामकरण ब्लेड ब्यूरिन प्रधान उपकरणों तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवाश्मों के साक्ष्यों पर आधारित है। यही कारण है कि इस नाम का प्रयोग अफ्रीका एवं अधिकांश एशियाई क्षेत्रों की मिलती जुलती पाषाणिक संस्कृतियों के लिए प्रायः नहीं किया जाता है। भारत में यद्यपि कतिपय पुराविदों ने ब्लेड तत्व प्रधान पाषाणिक सामग्री की खोज का दावा किया था, तथापि भारतीय प्रागितिहास में उच्च पुरापाषाण काल के अस्तित्व के विषय में संदेह किया जाता था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बिला सुरगम गुफा और एमसी बर्किट तथा एले कमियाडे ने भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र से एवं के आर यू टॉड ने मुंबई के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से इस प्रकार के पाषाण उपकरणों की खोजें की थी, लेकिन बहुत समय तक इन खोजों के महत्व को ठीक से नहीं आंका जा सका। भारत के संदर्भ में विद्वानों की यह धारणा प्रबलतर होती गई कि यहाँ पर यूरोप की उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के समान पाषाणिक संस्कृति विकसित नहीं हुई। मध्य पुरापाषाणिक लेवावा उपकरणों से सीधे मध्य पाषाणकालिक लघु पाषाण उपकरणों का विकास हुआ। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अफ्रीका के प्रागैतिहासिक अध्ययन में व्यवहृत शब्दावली आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल के प्रयोग की संस्तुति सन 1961 से बराबर की जाती रही है। एस डी सांकलिया जैसे शीर्षस्थ पुराविद ने भी सन 1962 में प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान नामक अपनी पुस्तक के प्रथम संस्करण में उच्च पुरापाषाण शब्द का प्रयोग तक नहीं किया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के 70 एवं 80 के विगत दो दशकों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रागैतिहासिक अनुसंधान कार्य हुए हैं उनसे कुछ ऐसी पुरातात्विक सामग्री सामने आई है जिसके आलोक में विद्वानों को अपनी धारणा बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्ररूप एवं तकनीकी बनावट की दृष्टि से भारत की कतिपय पाषाणिक सामग्री को उच्च पुरापाषाणिक स्वीकार किया जाने लगा है। इस बदले परिप्रेक्ष्य में भारत में पुरापाषाण काल के निम्न मध्य तथा उच्च विभाजनों का प्रयोग अधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में अनेक पुरास्थलों पर ब्लेड ब्यूरिन उपकरण समूह एक सुनिश्चित स्तरित भूतात्विक निक्षेपों से प्राप्त हुए हैं। प्रसार भारत में अभी तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान इन 8 प्रदेशों पृष्ठ संख्या 263 से उच्च पुरापाषाणिक सामग्री प्रतिवेदित है। इनके अधोलिखित पुराक्षेत्र एवं पुरास्थल विशेष उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी तथा सोनभद्र जिले में चोपन के पास सोन घाटी, बिहार में सिंहभूम, मध्य प्रदेश में जोगदहा, भीम बैठका, बबुरी, रामपुर, बाघौर, सीधी जिला, महाराष्ट्र में पटड़े, भजड़े तथा इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेड़ी गुंता, बेमुला, ये रगोंडा पालेम तथा कर्नूल की गुफाएं, कर्नाटक में शोरापुर, दोआब, गुलबर्गा जिला, गुजरात में विसदी तथा राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर। इस प्रकार भारत के विभिन्न प्रदेशों के अनेक स्थानों पर स्थित उच्च पुरापाषाणिक स्थलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूरोप की ही भांति यहाँ पर भी निश्चित रूप से मध्य पुरापाषाण काल के बाद उच्च पुरापाषाण काल की स्थिति थी। उच्च पुरापाषाणिक उपकरण या तो विभिन्न नदियों के अनुभागों के भूतात्विक स्तरों से अथवा विभिन्न पुरास्थलों के स्तरित जमावों से प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रयों से मिलने वाले उपकरणों से स्पष्ट होता है कि उच्च पुरापाषाणिक मानव ने कुछ समय तक इनको अपना आवास स्थल अवश्य बनाया था। उपकरण उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते हैं। विविध प्रकार के ब्लेडों तथा ब्यूरिन के अतिरिक्त कई प्रकार के स्क्रेपर, वेधक, पॉइंट्स तथा चांद्रिक, छिद्रक आदि प्रमुख उपकरण हैं। भलीभांति गढ़े हुए एक विशेष प्रकार के नलिकाकार क्रोडो, फ्लटेड कोर्स, से इस प्रकार के ब्लेड निकाले जाते थे। क्रोट को अभिष्ट आकार देने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के टुकड़े को भली भांति गढ़ लिया जाता था। गढ़ने के बाद क्रोट का आकार सामान्यतः बेलनाकार हो जाता था। इसके बाद बेलनाकार क्रोट के दोनों सिरों पर छोटे छोटे फलक निकालकर आघात स्थल बना लिए जाते थे। तत्पश्चात निपीट अथवा संघात विधि से लंबे पतले एवं समानांतर बाहु वाले ब्लेड निकाले जाते थे। तदनंतर कार्यांग बनाने के लिए उन पर पुनर्गढ़न किया जाता था। बहुत से ऐसे ब्लेडों को भी उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता था जिनके किनारे अत्यंत तीक्ष्ण होते थे और उन पर किसी प्रकार के पुनर्गढ़न की आवश्यकता नहीं होती थी। उपकरणों के निर्माण के लिए अच्छे किस्म के फ्लिंट चर्ट एवं जैस्पर आदि पत्थरों का उपयोग किया गया है। प्रस्तर पर निर्मित उपकरणों के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप की ही भांति भारत में भी उच्च पाषाण काल से संबंधित हड्डी के बने हुए अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के उपकरण अभी तक सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्छलता चिंतामणुगावी शिलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हड्डी के उपकरणों का उल्लेख किया जा सकता है। ये उपकरण मुख्य रूप से पशुओं की हड्डियों से बने हुए हैं जिनमें स्क्रेपर, छिद्रक, छेनी, स्कंधित बेधक, बार्ब तथा धार वाले उपकरणों का उल्लेख किया जा सकता है। ये उपकरण मुख्य रूप से पशुओं की लंबी हड्डियों तथा सिंगों से बनाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 264, चित्र 19, बेलन नदी, उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण। कला पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में उच्च पुरापाषाण काल के मानव ने हड्डी, हाथी दांत आदि पर पशुओं तथा स्त्री मूर्तियों का निर्माण किया था। गुफाओं और शिलाश्रयों में अनेक प्रकार की चित्रकारी एवं उत्कीर्ण करके चित्र बनाए थे। भारत में इस प्रकार के कलात्मक साक्ष्यों का अभाव खटकता रहा है। इधर हाल ही 20वीं शताब्दी के 70 तथा 80 के दशकों में इस प्रकार के कतिपय नमूने प्राप्त हुए हैं जिनसे भारत की उच्च पुरापाषाणिक कला पर किंचित प्रकाश पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नामक नाले के तृतीय ग्रेवल के अपर्दित जमाव से हड्डी बनी हुई मातृदेवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। कतिपय पुराविद इसे हारपून कहते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित पटड़े नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवकों, एक सेल्स पर आड़ी तिरछी क्रिसक्रॉस रेखाओं से युक्त अलंकरण बने हुए थे। इनके अलावा शुतुरमुर्ग के अंड कवक एवं सीपी सेल्स के बने हुए मन के बीज भी उपर्युक्त पुरास्थल से मिले हैं। बीएस वाकड़कर को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफा संख्या 3A28 से नीले रंग के पाषाण के पृष्ठ संख्या 265 कतिपय टुकड़े प्राप्त हुए थे। वाकड़कर ने ऐसी संभावना प्रकट की थी कि इन टुकड़ों का उपयोग चित्रकारी के लिए रंग तैयार करने के लिए होता रहा होगा। नीले रंग के धातु राग पिगमेंट से निर्मित चित्रों को वे प्राचीनतम मानते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना की जा सकती है कि विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों से में बने हुए कतिपय चित्र उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हो। भावी उत्खननों तथा अन्वेषणों से इस प्रकार के अधिकाधिक कलात्मक साक्ष्यों के मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चित्र 20, बेलन नदी, मातृदेवी। कलात्मक भारत में कालानुक्रम। भारत में उच्च पुरापाषाण काल का कालानुक्रम निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के साक्ष्यों की सहायता ली जाती है। एक पशु जीवाश्म संबंधी साक्ष्य, दूसरा रेडियो कार्बन तिथियां। पशु जीवाश्म संबंधी साक्ष्य। नदियों के अनुभागों के तृतीय ग्रेवल के हस्तगत जमावों से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह ग्रेवल नदियों की तृतीय उच्चयन अवस्था से संबंधित माना जाता है। नर्मदा, गोदावरी, सोन तथा बेलन आदि नदियों और उनकी सहायक सरिताओं से तृतीय उच्चयन काल के स्तरित जमावट से पशुओं पृष्ठ संख्या 266 के बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म हाथी, मवेशी, गाय भैंस, नीलगाय, घोड़ों, सुअर, भालू तथा कई प्रकार के हिरणों आदि से संबंधित है। पशुओं के इन जीवाश्मों को मोटे तौर पर उच्च प्राचीनतम काल से संबंधित माना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित मुच्छलता चिंता मनुगावी के शिलाश्रयों के उत्खनन से उच्च पुरापाषाणिक प्रस्तर तथा अस्थि के उपकरणों के साथ प्राप्त जीव जंतुओं के अवशेषों को केएन प्रसाद ने उच्च प्राचीनतम कालीन बतलाया है। इस आधार पर भारत में उच्च पुरापाषाण काल का कालानुक्रम लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। रेडियो कार्बन तिथियां अभी तक उच्च पुरापाषाणिक परंपरा के कालानुक्रम निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन की 4 तिथियां उपलब्ध हैं। इनमें से 2 तिथियां महाराष्ट्र में घोर नामक सरिता के तट पर स्थित इनाम गांव तथा शेष 2 तिथियां उत्तर प्रदेश में बेलन नदी के तट पर अवस्थित देवघाट नामक पुरास्थल से प्राप्त नमूनों पर आधारित हैं। ये तिथियां इस प्रकार हैं: 1. इनाम गांव TF 1003 से 21,110 प्लस माइनस 615 BP 2. इनाम गांव TF 1117 से 18,750 प्लस माइनस 350 BP 3. दवघाट PRL 86 से 23,840 प्लस माइनस 830 BP 4. देवघाट TF 1245 से 17,765 प्लस माइनस 340 BP ये चारों तिथियां 21,000 ईसा पूर्व से 18,000 ईसा पूर्व की हैं, जबकि उच्च पुरापाषाण काल अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि देवघाट के नमूने तृतीय ग्रेवल के निक्षेपों से एकत्र किए गए थे। तृतीय ग्रेवल के ठीक नीचे स्थित मिट्टी के जमाव से भी उच्च पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में 23,840 ईसा पूर्व के पहले यहाँ उच्च पुरापाषाण काल के आरंभ की तिथि होनी चाहिए। बेलन क्षेत्र में उच्च पुरापाषाण काल के आरंभ की तिथि 30,000 ईसा पूर्व अनुमानित की गई है। जहाँ तक उच्च पुरापाषाणिक संस्कृतियों के अंत की तिथि का प्रश्न है, इसके लिए परवर्ती मध्य पाषाणिक कालानुक्रम को आधार बनाया जा सकता है। इस विवेचन के आधार पर रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में उच्च पुरापाषाण काल का कालानुक्रम 30,000 ईसा पूर्व के 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पश्चिम यूरोप के समान भारत में उच्च पुरापाषाणिक उपकरण परंपराओं का विकास मध्य पुरापाषाण काल के बाद तथा मध्य पुरापाषाण काल के पहले हुआ था। अनेक पुरास्थलों के उत्खनन से उच्च पुरापाषाण काल की स्थिति का क्रम स्पष्ट है। नदियों के तृतीय उच्चयन से संबद्ध ग्रेवल जमावों में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पाषाणिक परंपराओं में एक विकासात्मक क्रम पृष्ठ संख्या 267 भी दृष्टिगोचर होता है, जिसके अनुसार हम मध्य पुरापाषाणिक उपकरण परंपराओं से उच्च पुरापाषाणिक परंपराओं को विकसित होते हुए देख सकते हैं। पुनः उच्च पुरापाषाणिक उपकरण परंपराओं से मध्य पाषाणिक उपकरणों का विकास कालांतर में संपन्न होता है। उत्पत्ति एवं विकास स्तरीकरण, उपकरण प्रकार, टाइपोलॉजी एवं उपकरण निर्माण में प्रयुक्त पाषाणों के संवेद साक्ष्य से यह इंगित होता है कि उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों का विकास पूर्ववर्ती मध्य पुरापाषाणिक उपकरणों में हुआ है।
तो मिला ही नहीं होगा, तुम्हारा फोन वहाँ पर बंद है। तो बोले हाँ यार चलिए आना है, कह रहा हमें कल आना है, वो तो हम आ ही गए, इसमें गया क्या है बेचारा, ये सब बोली।
इस संदर्भ में वेलन घाटी से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख किया जा सकता है। वेलन घाटी में नदी अनुभाग के तृतीय ग्रेवल तथा उसके ठीक नीचे स्थित पीली मिट्टी के जमाव से उच्च पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर इन उपकरणों की भूतात्विक स्तरित स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे अन्य पुरास्थलों की ऊपरी सतह पर प्राप्त ये बेलन घाटी में उच्च पुरापाषाण काल के पहले के मध्य पुरापाषाण काल के पूर्ववर्ती स्तरों से भी प्राप्त होते हैं, किंतु इन ब्लेड फलकों तथा उच्च पुरापाषाणिक ब्लेडों में कुछ अंतर पाया जाता है। मध्य पुरापाषाणिक ब्लेड फलक या तो साधारण अथवा लेवावा क्रोडों से निकाले गए हैं, किंतु उच्च पुरापाषाणिक ब्लेड नलिकाकार क्रोडों से निकाले गए हैं, इसलिए ये ब्लेड अपेक्षाकृत पतले सकरे तथा समानांतर बाहु वाले होते हैं। दक्षिण बिहार के सिंहभूम जिले, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा संख्या 3F23 तथा महाराष्ट्र के पटड़े से प्राप्त साक्ष्यों से भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में भीमबेटका की उपर्युक्त गुफा के उत्खनन में उच्च एस्विलन उपकरणों से लेकर मध्य पाषाणिक उपकरणों का एक अविच्छिन्न क्रम मिला है। भीमबेटका के मध्य पुरापाषाणिक एवं उच्च पुरापाषाणिक उपकरण क्वार्ट्जाइट नामक प्रस्तर पर निर्मित हैं। स्क्रेपर वेधक तथा ब्लेड ये उपकरण इन दोनों ही परंपराओं में मिलते हैं। इस प्रकार इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों की भांति भारत में भी उच्च पुरापाषाणिक संस्कृतियों का विकास स्थानीय पुरापाषाणिक उपकरण परंपराओं से हुआ रहा होगा।